نسیم حقیقت.
میرا دوست چند میٹر کے فاصلے پر تھا. اس جگہ گڑھا نہیں تھا بلکہ کچھ گہری زمین تھی کہ جہاں میں گرا. مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر ہم بدحالی میں پڑے ہوئے گریا کرتے رہے. میں نے ذرا سا اپنا سر اٹھایا تو دیکھا انہیں مسلح افراد میں سے ایک ہاتھ میں اسلحہ لیے ہوئے میرے اس دوست کی طرف بڑھ رہا ہے. میں پیٹ کے بل لیٹ گیا, پھر اپنے پاس پڑے ہوئے ہتھیار تک خود کو کھینچ کر پہنچایا تو دیکھا کہ اس میں گولیاں بھری ہوئی تھیں. پھر میں نے اپنے بائیں بازو سے فائر کرنا چاہا لیکن اس ہاتھ میں گولی لگی ہوئی تھی. بائیں پیر میں بھی گولی لگی ہوئی تھی. صرف ایک ہاتھ اور ایک پیر صحیح و سالم تھا. اس کے ذریعے بھی ہم فائر نہیں کر سکتے تھے. میں نے اسلحہ رکھ دیا اور اپنی آنکھیں مود لی اور اپنی بندوق اس پر چلا دی اور پھر گرد و خاک کا ایک طوفان سا اٹھا. سمجھ میں نہیں آیا کہ گولی اس کو لگی یا نہیں. اور جب طوفان تھما تو دیکھا کہ وہ مسلح شخص زمین پر پڑا ہوا ہے اور ہمارا دوست ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے. میں نے ہزار مشقت سے خود کو کھینچ کر اپنے دوست تک پہنچایا اور جیسے اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور اسے بوسا دیا, اس کی شہادت واقع ہو گئی. پھر میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے مجھ پر گولیوں کی بوچھار ہونے لگی اور میرے بدن کی جو حالت ہوئی وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں. جس ہاتھ پیر پر پہلے ہی گولی لگ چکی تھی اور پھر اس پر گولیاں لگی ہوں اور بار بار گولی لگ رہی ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کی کیا حالت ہو رہی تھی. میرا یہ ہاتھ اور یہ پیر بھی بے اختیار اچھل رہا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر بعد گولیوں کی آوازیں تھمی. کوئی وہاں تھا بھی نہیں جو فائر کرتا. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے کہ اچانک کیا دیکھا کہ وہی مسلح افراد کرتی لباس میں ملبوس پہاڑ کے دامن سے گھوڑوں پر سوار اور پاپیادہ اسی سڑک پر جا رہے ہیں, یعنی پہاڑ کے دامن سے نکل کر سڑک پر آ رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ وہ عسکریت پسند ہمارے جس دوست کے پاس بھی جاتے ہیں وہ شہید ہو چکا ہے اور جو جانکنی کے عالم میں ہے انہیں پیر سے مارتے ہیں یا بندوق کی نال سے یا پھر ان پر گولیاں چلاتے ہیں. یہ صورتحال دیکھ کر میں گھبرا گیا اور کہا, اے امام زمان مدد کیجیے تاکہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں زندہ ہوں. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں, پھر ایک بار آنکھ کھول کر دیکھا کہ وہ میرے سمت آ رہے ہیں یا نہیں. کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے قریب ہو رہے ہیں. میں نے اپنی سانس روک لی. میرا سارا بدن گولیوں سے چھلنی تھا اور منہ کے بل زمین پر بھی گر چکا تھا. بدن میں طاقت نہیں تھی. میں اپنی آنکھیں بند کیے زیر لب صرف یا امام زمان یا امام زمان کہہ رہا تھا. مجھے بس اتنا محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں. میں اسی حالت میں یا امام زمان کا ورد کر رہا تھا کہ ایک شخص نے پوری طاقت سے میرے پہلو پر ایک پیر مارا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے پہلو سے آواز نکلی اور پھر ہماری سانس رکنے لگی. دوسری طرف سے بھی ایک شخص نے زور سے پیر مارا, پھر ہماری سانس رک گئی اور ایک اور شخص نے بندوق کے کندھے سے میری پیٹ پر مارا اور پھر اسلحے کے نوک سے مجھے پلٹا. میں پیٹ کے بل زمین پر پڑا تھا. مجھے سیدھا کرنے کے بعد ایک شخص نے جوتے سمیت اپنے پیر سے میری ناک اور ہونٹ بری طرح سے رگڑ دیے. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اس میں شاید ابھی جان باقی ہے اور یہ کہہ کر میرے سینے پر گولی چلا دی اور یہ گولی ابھی بھی میرے دل کے قریب ہے جسے نکالا نہیں گیا ہے. پھر کسی نے کہا کہ اسے کہیں پھینک دو اور ایک نے میرا گلا پکڑ کر گھسنا شروع کیا. میرے ہاتھ پوری طرح ٹوٹ چکے تھے, ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں, سینے کی ہڈیاں بھی دھس گئی تھیں, سانس لینا مشکل تھا. میں صرف زیر لب یا امام زمان کہہ رہا تھا اور بس. اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. میرا گریبان پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا کچھ دور لے گیا اور پھر پیر سے مجھے اسی گاڑی کی طرف دھکیل دیا. موسم دھیرے دھیرے سرد ہو رہا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ٹھنڈک سے میرے دانت بچنے لگے. اب مجھ میں اپنے دفاع اور بچاؤ کی طاقت نہیں تھی. سردی بری طرح مجھ میں اتر رہی تھی اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی شخص کسی دریائے تالاب میں گر جائے اور تیز موج کے سبب اس میں اوپر نیچے ہوتا ہو اور ہچکولے کھائے. اسی طرح میں بھی اوپر نیچے ہونے لگا. मैं लड़क रहा था, मेरे बदन से काफी खून बह गया था। चंद लम्हों कबल मौसम बहुत गर्म था, इसीलिए मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन अब मेरे बदन का जोड़ जोड़ ठंडा पड़ गया था और मैं लरज रहा था और ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने शायद चश्म जदन में ये देखा कि मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ, मैं खुद को देख रहा हूँ और अब मुझे न किसी दर्द का एहसास है, न हाथ में गोली लगने का, न ही अपनी तशनगी का। मैं इस बुलंदी से ताज्जुब से खुद को देख रहा था और अपने उन दोस्तों को जो वहाँ पड़े हुए थे। मैं ताज्जुब से कहा, अरे ये तो मैं खुद को देख रहा हूँ, वैसे ही जैसे कोई आदमी खुद अपनी फिल्म बना रहा हो। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल किसी तरफ जाने को चाह रहा है। जैसे ही मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि किसी तरफ जाऊं, देखा कि आसमान का एक गोशा नजर आ रहा है और मैं वहीं हूं। जैसे ही मेरे मुंह से निकला कि जाऊं, तो देखा कि बआसानी मैं इस तरफ से उस तरफ आ जा रहा हूं और ये देख रहा हूं कि मेरे कुछ दोस्तों के जनाजे भी जमीन पर पड़े हुए हैं और बहुत से लोग उनके जनाजों के गिर्द हल्का बनाए हैं और फिर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैंने दिल में कहा कि क्या अच्छा हो कि मैं भी उनके पीछे चलूं। मैंने जैसे ही ये कहा कि उनके पीछे चलूं, देखा कि सबको पहचान रहा हूं और वो सब हमारे मरे हुए दोस्त ही हैं। उनके जनाजे जमीन पर पड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने कहा कि उन लोगों के पीछे चलूं, देखा कि बहुत तेजी से चलने लगा हूं और जब मैंने कहा कि मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं है, तो उस वक्त मैं भी एक परिंदे की मानिंद बुलंद परवाज करने लगा। कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहा था कि एक ने कहा, ए अब तुम ना आओ हमारे पीछे। मैंने पूछा कि क्यों? उसने कहा कि तुम्हारा हमारे साथ आना तय नहीं पाया है, लेकिन मैंने कहा कि मैं जरूर चलूंगा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगा कि वो लोग नीचे आए थे और फहरिस्त पढ़कर सुना रहे थे जिसमें तुम्हारा नाम नहीं था। मैंने पूछा कि मेरा नाम क्यों नहीं? तो कहा तुम्हारा नाम इसलिए नहीं है कि तुम्हें अभी आना नहीं है। उसने यही जवाब दिया और कहा कि तुमने आना नहीं चाहा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं जरूर चलूंगा। तो कहा नहीं, यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से लौट जाओ। ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसी दोस्त ने मुझसे ये भी कहा कि अभी तुम नहीं आओगे, हाँ अलबत्ता बाद में आओगे और हम तुम्हें एक ऐसी चीज दिखा दें ताकि तुम यकीन कर लो कि तुम भी हम में से हो। मैंने कहा कि ठीक है। हम इसी तरह बातें कर रहे थे कि अचानक एक ऐसी जगह पहुंचे कि जहां हमारे शहीद होने वाले कदीमी दोस्त थे। मैंने ये देखा वो सब नहायत वसी अरीज और सरसब्ज शादाब बागात में हैं, सब बैठे हुए हैं और एक जगह खाली है। उसने कहा यह खाली जगह तुम्हारी है, लेकिन अभी नहीं, तुम बाद में आओगे, अभी वापस लौट जाओ, वापस चले जाओ। मैंने देखा एक शिकारी परिंदा जिस तरह अपने शिकार के लिए जमीन पर गोता लगाता है, मैं भी तेजी से जमीन पर आ पड़ा। फिर ये समझा कि नहीं, ये सब तो ख्वाब था, महज ख्वाबो ख्याल। और उसके बाद वही दर्द और सोजिश शुरू हो गई। फिर क्या देखता हूँ कि फजाइया के हेलीकॉप्टर आ गए हैं और मुजाहिदीन लाउड स्पीकर से कह रहे हैं कि तुम मुहासरे में हो। लड़ाई दोबारा तेज हो गई। आखिरकार हमें एहतियात के साथ एक कंबल में रखा गया और लोग ये समझ रहे थे कि मैं शहीद हो चुका हूँ। मेरा जनाजा उन्होंने टोयोटा गाड़ी में रखा और दो तीन शोदा के जनाजे भी लाकर मेरे ऊपर डाल दिए। मेरे लब भी खुल नहीं सकते थे, आंखों में खून जमा हुआ था, मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता था, चीखना पुकारना तो दरकिनार। उस वक्त जब गाड़ी चल रही थी तो पहाड़ी पर गाड़ी के ऊपर नीचे होने और शदीद झटके लगने से वो जनाजे सब मेरे ऊपर आ गए और मैं उन जनाजों को अपने ऊपर से हटा भी नहीं सकता था। हमारी गाड़ी खुद हमारे शहर यानी उरूमिया पहुंच गई। उन लोगों की बातें सुनकर मालूम हुआ कि हम कहां गए, क्योंकि हम सिर्फ सुन सकते थे, किसी को देख भी नहीं रहे थे। हम देख भी रहे थे तो जरा सी खुली हुई आंख से वल्फज दो कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। औरत और मर्द अपने खून का हथिया देने के लिए वहां टूट पड़ रहे थे। उन लोगों ने शोहदा की लाशें अपनी आंखों से देखी थी। मैं तो सिर्फ सीना जनी या हुसैन और चीख और फरियाद की आवाजें सुन रहा था। हर कोई आहो नालो फरियाद कर रहा था। फिर डॉक्टर्स आ गए और उन्होंने तुर्की जबान में कहा कि बहुत एहतियात के साथ बाहर निकालो और इन सब को सर्द खाने ले जाकर रख दो ताकि वाजे हो सके कि कौन कहाँ का है। मैंने कहा परवरदिगारा तू ही मेरी मदद कर। मैंने बहुत चाहा कि हाथ को हिलाऊं, पैर को हरकत दूं, मगर जिस्म का बंद बंद टूट चुका था, मेरे लब भी बंद थे, इस हद तक प्यासा था और आहो फरियाद की थी कि होंठ सी गए थे। अब मुझे भी उठाकर स्ट्रेचर पर रखा गया और दो आदमी मुझे सर्द खाने की तरफ ले जाने लगे। मालूम नहीं था कि हम सर्द खाने पहुंचे थे या नहीं। मैंने दिल में कहा, खुदाया तुझे पैगंबर इमाम जो तेरा महबूब बंदा हो उसकी कसम, कुछ ऐसा कर कि ये लोग समझ जाएं कि हम जिंदा हैं। अभी ये कही रहा था कि एक नहायत नर्म और लतीफ हवा का झोंका मेरी सूरत से टकराया और मेरी आंख खुल गई। मेरा ब्रंका ले जाने वाले उन दो अफराद ने जब ये देखा तो तुर्की जबान में कहने लगे, अरे ये क्या हुआ, एक शहीद जिंदा हो गया। ये कहकर मेरा स्ट्रेचर फेंका और भागे और फिर टूटे हुए हाथों और पैरों से चटकने की आवाजें निकलने लगी। हमारा बदन चूर चूर हो गया था। अचानक पूरे अस्पताल में शोर गुल मच गया। सबके मुंह पर यही था कि एक शहीद जिंदा हो गया। उन औरतों और मर्दों को जाहिरन किसी चीज का इंतजार था। मैंने देखा कि सब लश्कर की तरह हम पर टूट पड़े। ऐसा लगा कि हम शहीद हो गए हैं और वो लोग तबरुकन हमारा लिबास लेना चाहते हैं। और वही हुआ, चश्मे जदन में उन लोगों ने हमारा पूरा लिबास नोच लिया। फिर डॉक्टर्स आए और उन्होंने तुर्की जबान में, क्योंकि वहाँ लोग तुर्की जबान में बात करते हैं, कहा कि इसे फौरन ऑपरेशन रूम में ले चलो। ये कहने के बाद मुझे फिर से ब्रंकार्ड पर रखा गया और फिर कहाँ ले गए मुझे याद नहीं। डॉक्टर फरजामी के जिन्होंने मेरा एक्सरे किया था वो शायद बैरूनी मुल्क या कहीं और गए हुए थे। एक्सरे देखने के बाद पता चला कि हमारी हड्डियों के दरमियान बहुत ज्यादा फासला हो गया है। अब भी बहुत फासला है और ये जुड़ी नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। ऑपरेशन रूम से मुझे बाहर लाया गया। मैंने अपना एक्सरे फोटो देखा और सचमुच हड्डियों के दरमियान काफी फासला था और उस पर डॉक्टरों की नाउम्मीद करने वाली बातें भी थी। वो कहते थे हड्डियाँ अब जुड़ने वाली नहीं है। उस रात मेरी हालत मुनकलिब हो गई और मैंने बहुत गिरिया किया, मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे गांव में हर साल शहदाए करबला की तमसील बनती है और मसायब पढ़े जाते हैं। मैंने देखा कि आशूर का दिन है और एक साहब हमें अस्पताल के बेड समेत वहां ले गए जहां लोग तमसील शहदाए करबला का मंजर देख रहे थे। मैंने ये देखा कि उस वक्त जाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुखसती का मंजर पढ़ रहा है और जिस तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान में जाते वक्त हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा से अपनी माँ फातिमा जहरा का बनाया हुआ कफन मांगा था, इमाम हुसैन की शबीह बनने वाला शख्स भी आकर उसी पैरहान का सवाल कर रहा था कि इतने में एक ने कहा, यह पैरहान तुम खुद पहनने के बजाय उसको पहना दो जो मरीज बेड पर है। उसने पूछा कि क्यों, तो कहने लगा कि ये हमारा फौजी है, आज हम इसे लाए हैं ताकि तुम ये पैरहान उसे पहना दो। चुनांचे उसने वही पैरहान जो सफेद अरबी लिबास था मुझे ख्वाब में पहनाया और कहा कि लिबास तुम्हारा है। मैं सुबह नींद से उठा, सुबह 9 बजे डॉक्टर फरजामी को आना था, पता नहीं वो बैरून मुल्क गए थे या कहीं और। गरज की उन्होंने मुझे देखा और फिर नर्स से पूछा कि उनका एक्सरे लिया गया, कहा हाँ डॉक्टर साहब का लिया गया है। फिर मेरे हाथ पैर बंधे हुए प्लास्टर पर एक नजर डाली और नर्स से पूछा कि प्लास्टर किसने बांधा है। जवाब मिला कि फलाने ऑपरेशन रूम में कल बांधा था। डॉक्टर ने कहा ये प्लास्टर सही नहीं बंधा है और दोबारा लिखा कि उसे 11 बजे ऑपरेशन रूम में ले जाया जाए और एक्सरे के लिए कहा कि ये 24 घंटा पहले का है। फिर दोबारा एक्सरे लिया गया। अब जो देखा तो हड्डियां सब जुड़ी हुई थी। मैं खुद भी समझ नहीं सका, हैरत में पड़ा हुआ था। डॉक्टर भी कल के एक्सरे को और आज के एक्सरे को बार बार बल्ब के सामने लाकर मिला रहा था। मैंने देखा कि डॉक्टर की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मेरे पास आकर अपना मुंह मेरे कान से लगाकर पूछा, कल रात क्या वाकया पेश आया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा जो एतकाद तुम्हारा है मेरा भी वही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं खुद नहीं जानता, मैं आपको क्या बताऊं। डॉक्टर ने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कल जो एक्सरे हुआ था उसमें हड्डियों के दरमियान चंद सेंटीमीटर का फासला था और इस वक्त वो जुड़ी हुई है। जब मैं चुप रहा तो कहने लगा कि ठीक है ना बताओ, लेकिन जान लो कि जिन वजूहात की बिना पर तुम महाज पर लड़ने गए मैं भी उन्हीं वजूहात की बिना पर यहाँ रुका हुआ हूँ। मैं भी उनसे इश्क मोहब्बत करता हूँ। अब तो हमारे गांव का वो शख्स भी जिंदा नहीं रहा जो इमाम हुसैन की तमसील बनता था, खुदा उस पर रहमत नाजिल करे। उसने भी वही ख्वाब देखा था जो हमने देखा था। उससे भी कहा गया था कि फला शख्स को फला लिबास पहना दो। وغیرہ وغیرہ. اور پھر میں نے خاندان کے تمام افراد سے کہا تھا کہ چلو محمود کو ہمارے جد نے شفا دے دی ہے.
انہیں مثنوی مولانا کا ایک بڑا حصہ ازبر ہے. دیوان حافظ کے بیشتر اشعار یاد ہیں. قرآن اور نہج البلاغہ کا بھی زیادہ تر حصہ ان کو حفظ ہے. اور اس وقت وہ قرآن مجید، نہج البلاغہ اور مثنوی اور حافظ کا بقیہ حصہ بھی حفظ کر رہے ہیں. ان چیزوں سے انہیں عشق ہے. اس کے علاوہ ان میں ادبی ذوق بھی ہے. خاص طور سے عرفانی ادب سے وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. ساتھ ہی وہ اپنی اسی فکر کے زیر اثر زیادہ تر محفلوں اور جلسوں میں وہ خود اپنے کہے ہوئے اشعار پڑھتے ہیں.
خواہشات نفسانی مجھے تنہا کر چکی ہیں اور میں قافلے عشق سے بچھڑ گیا. اس وقت میرے حوصلوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. یہاں تک کہ شاہراہیں بھی گواہ ہیں کہ میرے پیر کے آبلوں نے مجھے قافلے عشق میں شامل ہونے سے روک دیا. ہم ہوا سے زیادہ آزاد تھے، لیکن افسوس کہ نفسانی خواہشات کی زنجیر کی سنگینی قافلے عشق کی راہ میں مانے ہو گئی. میرے اور خدا کے درمیان صرف ایک سجدے کا فاصلہ تھا، مگر نفس کے اتباع نے اس مرحلے میں مجھے پیچھے چھوڑ دیا. میری خواہشات کے جھوٹے دلاسوں اور طولانی آرزوؤں نے مجھے قافلے عشق میں شامل ہونے نہیں دیا.